आपके प्यार और आपको ठुकराने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, पर मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकती।
क्यों?
निशांत ने चौंकते हुए सवाल किया और व्याकुलता भरी निगाहों से उसे देखने लगा। अर्पिता के माथे पर कुछ लकीरें उभर आईं। मैंने सालों से अपनी दीदी को अकेले ज़िंदगी की हर लड़ाई लड़ते देखा है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उन्हें कभी वो प्यार और साथ नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं, पर अब उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आया है जो मेरी दीदी की मुस्कुराहट की वजह बन गए हैं। दी उन्हें पसंद करती हैं, वो भी दी को चाहते हैं, पर दीदी का पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा है कि वो शादी का जिक्र तक नहीं सुनना चाहती। पर मैं चाहती हूँ कि वो उनसे शादी कर लें और उन्हें उनके हिस्से की खुशियाँ मिल जाएं। पर मैं ये भी जानती हूँ कि दी इतनी आसानी से हाँ नहीं कहेंगी और उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगर अपनी बाकी दोनों दीदी की तरह मैं भी शादी करके चली गई तो मेरी दी तन्हा ही रह जाएंगी। निशांत ने खामोशी से और बड़े ही ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी, फिर गंभीरता से बोला, मतलब तुम अपनी शादी टालकर अपनी दी पर दबाव बनाने का सोच रही हो? इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं मेरे पास। जो तुम्हारी दी को पसंद करते हैं उन्होंने उन्हें शादी के लिए कहा है, जो तुम श्योर हो कि वो इनकार ही करेंगी? उन्होंने सीधे से तो नहीं पर घुमाकर बात छेड़ी थी, पर दीदी ने साफ इनकार कर दिया। उसके मन में शादी को लेकर ऐसा डर बैठ गया है कि उस शब्द तक से चिढ़ जाती है। पर मैं उन्हें अब और अकेले नहीं देख सकती, इसीलिए पहले मैं अपनी दी को उनकी खोई खुशियां लौटाऊंगी, उसके बाद ही अपने बारे में सोचूंगी। अर्पिता की नीयत साफ थी और इरादे मजबूत। निशांत देख रहा था कि अपनी दी से कितना प्यार करती है वो। कुछ सोचते हुए उसके लबों पर शरारती मुस्कान उभर आई। मैं ऐसा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप कैसे? अर्पिता ने चौंकते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। निशांत ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया तो अर्पिता उसके थोड़े पास जाकर खड़ी हो गई। निशांत ने उसके कान में कुछ कहा जिसे सुनते ही अर्पिता खुशी से चहकते हुए उसके गले से लग गई। बेचारा निशांत, जिसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसी पोजिशन में जम सा गया। अर्पिता को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ वो झट से पीछे हट गई और हड़बड़ाहट में निगाहें घुमाते हुए बोली, सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि निशांत ने एकाएक उसकी बाँह पकड़कर खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों के घेरे में उसे कस लिया। अब की बार अर्पिता स्तब्ध रह गई। उसकी सांसें थम-थम कर चलने लगीं। सीने में मौजूद दिल एकाएक जोरों से धड़क उठा और पेट में तितलियां उड़ने लगीं। कुछ अजीब से मीठे मीठे एहसासों ने उसके मन को गुदगुदा दिया। आई लव यू, निशांत उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। उसकी सर्द गहरी आवाज़ अर्पिता के दिल को छू गई। निशांत की सांसों ने उसके गाल को चूमा और खुद में सिमटती अर्पिता ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। उनके लबों की मुस्कान ने उनका जवाब दे दिया था। सभी खुशी खुशी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे। लगे हाथों दोनों को शगुन देकर रिश्ता पक्का कर दिया गया। सबने दोनों को आशीर्वाद दिया। निशांत को तो खूब छेड़ा जा रहा था। अर्पिता को राधिका ने अपने गले से लगा लिया था। उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि आँखें झलक आई थीं। सबका खाना पीना भी यहीं हुआ। हंसी मजाक और बातों के बीच सबने साथ में ज़मीन पर बैठकर खाना खाया। फिर जाने की घड़ी आई तो निशांत सबसे छुपते छुपाते अर्पिता के पास पहुंच गया। ए अप्पू, अपना नंबर तो दे दो। ओहो, अर्पिता फिर भाव खा रही थी। उसका इनकार सुनकर निशांत कुछ परेशान सा हो गया। यार, नंबर नहीं दोगी तो बातें कैसे होंगी हमारी? अर्पिता ने कनखियों से उसके बेकरार चेहरे को देखा और इतराते हुए बोली, बात करने के लिए जो इतना उतावला है वो नंबर का इंतज़ाम भी खुद ही कर ले। मैं तो नहीं देती किसी को अपना नंबर। सच में अंतरा की ही कॉपी थी वो। बड़ा मज़ा आ रहा था उसे निशांत को ऐसे तड़पाने और सताने में। बहुत शैतान हो तुम, निशांत ने ज़रा नाराज़गी जाहिर की और जवाब में अर्पिता ने अपनी बत्ती से चमका दी। वो तो मैं हूँ और ये मुसीबत आपने खुद अपने सर ली है, तो अब भुगतिए। निशांत ने ठंडी आह भरी और हारे हुए खिलाड़ी जैसे मुँह लटकाए वहाँ से जाने लगा। अर्पिता उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जीन्स धोने से पहले अपनी जीन्स की पॉकेट चेक कर लीजिएगा, कहीं बाद में पछताना ना पड़े आपको। अर्पिता के शब्द जाते हुए निशांत के कानों में पड़े तो उसने चौंकते हुए पलटकर उसे देखा। अर्पिता ने शरारत से मुस्कुराते हुए कुछ इशारा किया जिसे समझते हुए निशांत ने तुरंत ही अपनी जीन्स की आगे पीछे सब पॉकेट छान मारी और सबसे आखिरी वाली पॉकेट में उसे एक छोटा सा पेपर मिला। उसने झट से उसे खोल कर देखा तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। इसके साथ ही अर्पिता की खिलखिलाती हंसी की आवाज़ वहां गूंज गई। निशांत की सारी एक्साइटमेंट छू हो गई और चेहरा नाराजगी से भर गया। उसने निगाहें उठाकर अर्पिता को घूरा तो वो हंसते हंसते चुप हो गई, पर चंचल मुस्कान अब भी उसके लबों पर बिखरी थी। ये आपका टास्क है, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो पहले मेरा नंबर अरेंज करिए, उसके बाद हमारी बातें होंगी। देखते हैं आप मुझसे बात करने के लिए कितने बेकरार हैं और मेरा नंबर ढूंढने में कितना वक्त लगाते हैं। चैलेंज कर रही हो मुझे? निशांत ने भौं हुचकाते हुए उसे देखा। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और अगर आज के आज मैंने तुम्हारा नंबर ढूंढकर तुम्हें कॉल कर दिया तो इस चैलेंज के जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? जो आप कहें, अर्पिता ने बेपरवाही से जवाब दिया, जिसे सुनकर निशांत के लबों पर रहस्यमय मुस्कान उभर आई। कल मिलोगी तो मुझसे अपने कॉलेज के बाहर? अर्पिता पहले तो ये सुनकर चौंक गई, फिर मुंह बनाते हुए बोली, अभी से सपने भी देखने लगे। पहले मेरा नंबर को ढूंढिए, उसके बाद देखते हैं। तैयार रहना मुझसे कल मिलने के लिए, क्योंकि आज किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारा नंबर तो ढूंढ कर ही रहूंगा। उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर अब अर्पिता कुछ नर्वस हो गई। आप अपनी फैमिली की हेल्प नहीं लेंगे? शायद उसके दिमाग में क्या चल रहा है अर्पिता जान गई थी, और उसकी ये बात सुनकर निशांत कुटिलता से मुस्कुरा दिया था। मेरी फैमिली की हेल्प लूं या ना लूं, मेरी मर्जी है। बात सिर्फ तुम्हारा नंबर ढूंढने की हुई है, तो आज रात होने से पहले पहले हमारी बात हो जाएगी। इस बार निशांत मुस्कुरा रहा था और अर्पिता उसे नाराजगी से घूरने लगी थी। निशांत ने हवा में एक किस उछाली और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अर्पिता गुस्से में पैर पटकती ही रह गई। कार में निशांत, त्रिशांत और पल्लवी बैठे थे, साथ ही बातें भी हो रही थी। निशांत, वैसे तो अर्पिता अच्छी लड़की है, पर अभी बच्ची है और शैतान भी बहुत है, तुम निभा लोगे उसके साथ। दृशांत की बात सुनकर निशांत को अनायास ही अर्पिता की हरकतें याद आ गईं और लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई। शैतान तो बहुत है भैया, और बचपना भी बहुत है, पर ये बहुत प्यारी, समझदार है, रिश्तों की अहमियत जानती है। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी बिल्कुल वैसी है वो। दृशांत निशांत का जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया। उसका छोटा भाई जो कभी उसे खूब परेशान किया करता था, अब समझदार हो गया था। निशांत बाबू, कोई कुछ भी कहे, पर हम तो आपकी पसंद के कायल हो गए। क्या लड़की चुनी है आपने, आपके साथ उनकी कैसे कटेगी ये तो आप जाने, पर हम दोनों की तो खूब पटेगी। पल्लवी ने तिरछी निगाहों से दृशांत को देखा और मुस्कुरा उठी, जैसे उसे चिढ़ा रही हो, और सच ही था, दृशांत चिढ़ भी गया था। हाँ, तुम्हें शैतानी करने के लिए एक पार्टनर जो मिल जाएगी। दृशांत ने उसे घूरते हुए तंज कसा। पल्लवी ने उसे घूरा और तुनकते हुए बोल पड़ी, हाँ तो अंतरा के जाने के बाद से मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ, आप क्या जाने। अब देवरानी आएगी तो मैं तो इतने सालों की सारी कसर पूरी करूंगी, और आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि बैंड आपकी ही बजेगी।
दृशांत आगे कुछ महना, उससे पहले ही पल्लवी ने मुंह बनाते हुए अपना चेहरा घुमा लिया और निशांत से अर्पिता के बारे में बातें करने लगी। दृशांत ने अपनी बीवी को देखा, जो उससे ज्यादा दिलचस्पी उसके भाई की होने वाली बीवी में ले रही थी, और सर हिलाते हुए अपना ध्यान सामने लगा दिया। पापा, सब कितने अच्छे से हो गया ना, अर्पिता को निशांत पसंद आ गया, अच्छे घर में उसका रिश्ता हो गया, अब बस अर्पिता की शादी भी हो जाए, उसके बाद मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। शाम का वक्त था और राधिता आशुतोष जी के पास बैठी थी। सुबह से बहुत परेशान थी वो, सबसे ज्यादा चिंता तो उसे अर्पिता की ही थी, पर अब सब अच्छे से हो गया था, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वो जैसे ही चुप हुई, अर्पिता तुनकते हुए बोली, ज्यादा खुश मत हुई दीदी, अभी मैंने बस रिश्ते के लिए हाँ किया है, शादी के लिए नहीं। क्या मतलब? राधिका ने चौंकते हुए उसे देखा। अर्पिता आशुतोष जी के पास आकर बैठ गई और उसे नजरअंदाज करते हुए आशुतोष जी से बोली, पापा, मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा क्योंकि आप ऐसा चाहते थे। जैसे लड़के की तलाश आपको मेरे लिए थी, निशान जी बिल्कुल वैसे ही हैं, उनकी फैमिली भी अच्छी है, और मैं इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराकर आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पर मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पहले दी की शादी होगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है, जिसे मैं किसी के लिए भी नहीं बदलने वाली। अर्पिता ने एक नज़र राधिका को देखा, जैसे उसे ही सुना रही हो, और फिर वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। राधिका परेशान सी उसे देखती ही रह गई। जैसे ही उसने रूम में कदम रखा, उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर देखकर अर्पिता के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। तो मिल ही गया आपको मेरा नंबर? बिल्कुल, तुमने वो डायलॉग नहीं सुना, अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिशों में लग जाती है। मैंने शिद्दत से तुमसे बात करना चाहा और तुम्हारा नंबर खुद चलकर मुझ तक पहुंच गया, और रात से पहले तुम्हें फोन करके मैं चैलेंज जीत गया हूँ, तो कल तुम मिलने वाली हूँ मुझसे। दीदी से पूछूंगी, उसके बाद बताऊंगी, पर पहले आप ये बताइए कि मेरा नंबर लिया किससे आपने? ये तो एक सीक्रेट है, मिलोगी तब बताऊंगा, और ना मिलूं तो नहीं बताऊंगा, और अपनी बात से मुकरने की सजा मिलेगी तुम्हें। निशांत ने जैसे ही ये कहा, अर्पिता ने अपनी भौहें से कोड़ ली। अच्छा जी, तो आप सजा देंगे मुझे? बिल्कुल, और मेरी सजा बहुत खतरनाक होती है, इसलिए कोशिश करना कि कल कुछ देर के लिए ही सही पर मिल लो, फिर जब दोबारा दिल्ली आऊंगा तभी मौका मिलेगा। कल की जगह परसों नहीं चलेगा, कल सारी क्लासेस लगी है मेरी, शाम को ही फ्री हो सकूंगी। परसों सुबह कानपुर वापसी है हमारी, तो बस कल का ही दिन है हमारे पास। अब बताओ, मिलोगी? और कुछ नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज से घर ही ड्रॉप कर दूंगा, इसी बीच हमें साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा और एक दूसरे को समझने का मौका भी। कहा ना, दी से पूछ कर ही बताऊंगी। चलो, तुम अपनी दी से पूछ कर ही बता देना। वैसे तुम इतनी आसानी से मान गई, मेरे फोन करने पर हैरानी भी नहीं हुई तुम्हें, तुमसे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे पता था कि जितने उतावले आप थे मुझसे बात करने के लिए, मेरा नंबर अरेंज करके आप चैलेंज जीत जाएंगे और फिर मुझे आपकी बात माननी ही होगी। वैसे इसमें मेरा भी फायदा है, आपको जानने और समझने का मौका मिलेगा मुझे, इसलिए मान गई। बहुत तेज हो तुम। वो तो मैं हूँ, अर्पिता ने इतराते हुए हामी भरी और दोनों ही हंस पड़े। एक नए रिश्ते के साथ दोनों एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करने लगे। बातों का सिलसिला सा शुरू हो गया।